Thank you. ಸ್ಫುಟಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷು ಉನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಃ ತದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ಸಂಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ನಮವೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೇ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣೀ ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷಶೂನ್ಯವಾದೀ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶತಾರಿಣೇ. ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯನಾಮ್ನೇ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನೋಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷ್ವಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಪಡ್ ರಹೇ ಹೈ ಭಾಗವತ್ ಕೇ ಚೌಥೇ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 28 ಶ್ಲೋಕ ಕ್ರಮಾಂಕ 49 ಲಿಖಾ ಹೈ ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏವಂ ವಿಲಪಂತಿ ಬಾಲಾ ವಿಪಿನೇ ಅನುಗತಾಪತಿಂ ಪತಿತಾ ಪಾದಯೋರ್ ಭರ್ತು ರುದತ್ಯಶ್ರಣ್ಯವರ್ತಯತ್. ಏವಂ ವಿಲಪಂತಿ ಬಾಲಾ ವಿಪಿನೋ ಅನುಗತಾಪತಿಂ ಪತಿತಾ ಪಾದಯೋರ್ ಭರ್ತೃ ರುದತ್ಯಶ್ರಣ್ಯವರ್ತಯತ್. ಏವಂ ವಿಲಪಂತಿ ಬಾಲಾ ವಿಪಿನೇ ಅನುಗತಾಪತಿಂ ಪತಿತಾ ಪಾದಯೋರ್ ಭರ್ತೃ ರುದತ್ಯಶ್ರೂಣ್ಯವರ್ತಯತ್. ಏವಂ ವಿಲಪಂತಿ ಬಾಲಾ ವಿಪಿನೇ ಅನುಗತಾಪತಿಂ ಪಾದಯೋರ್ಭರ್ತು एवं विलपन्ति बाला पादयोर्वतु चतुश्रुण्य माताजी एवं विलपन्ति बाला विपिने अनुगतापतिं पतिता पादयोर्भर्तु रुदत्यश्रोण्य वर्तय एवं किस प्रकार विलपन्ति विलाप करती बाला अबोध स्त्री अबला विपिने निर्जन वन में अनुगता साथ गई हुई पतिम पति को पतिता गिरी हुई पादयोः पैरों पर वर्तुः पति के रुदती रोती हुई अश्रूणि आंसू अवर्तयत गिरा रही थी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। तात्पर्य जिस प्रकार पतिपरायणा पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरता है तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। तो आज अनेक मंदिरों से भक्त पुना मंदिर में राधा कुंजबैर मंदिर में आ पहुंचे हैं। कुछ पदयात्रा का पार्टी से भी कुछ भक्त आए हैं और कुछ कुछ भक्त गोवर्धन एको विलेज में अपने दो दिन की रिट्रीट परम पूज्य राधानाथ महाराज के साथ पूर्ति करके कुछ बाद इधर आए हैं। पुना के द्वारा अपने अपने स्थानों में वापस लौट रहे हैं। तो हम सब भक्तों को स्वागत करते हैं। हरि बोल। आज के सत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक अध्याय है, अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। अगर आपने इसके पूर्व सत्रों को सुना हो आपको पता होगा कि पुरंजन अगले जन्म में पुरंजनी जब बना उसका नाम पड़ा वैदर्भी और वैदर्भी के पति थे मलयध्वजा। तो मलयध्वजा एक आदर्श राजा रहा पहले, उसके बाद वानप्रस्थ लेकर जंगल में प्रवेश करके अपने पत्नी सहित रहते हुए दोनों आध्यात्मिक क्रियाओं में डूबे रहते थे। शास्त्र बताते हैं, मैंने पिछले एक सत्र में आपको बताया था, हमारे 100 साल की आयु जो है उसको हम चार विभागों में बांट सकते हैं, 25 25 25 25। पहले 25 साल में लर्न एंड ग्रो, सीखना और बढ़ना। दूसरा 25 साल में क्या करना चाहिए, एंगेज एंड अर्न, भक्ति सुकृति में लगना, भक्ति कार्यों में लगकर सुकृति को इकट्ठा करना। उसके बाद डिटैच एंड अटैच, वो 50 के बाद भौतिक जीवन से थोड़ा अनासक्त होकर आध्यात्मिक जीवन में आगे अग्रसर करना, आगे बढ़ना। और 75 के बाद प्रे एंड प्रिपेयर, अपने आप को तैयारी करना मृत्यु के लिए। मृत्यु आने वाला है, उसके पहले भगवान के स्मरण हो, भगवान के चिंतन हो, भगवान के कार्यों में हम डूबे रहे, तैयारी कर ले इस शरीर को त्यागने के लिए और वापस पुनः जन्म ना ले, इसके विरुद्ध हम भगवान के धाम में वापस लौट जाए, उसके लिए तैयारी करना होता है। तो वैदर्भी और मलयध्वजा दोनों भक्ति में उन्मुख थे, उत्साहित थे। सब सारे भौतिक पदार्थों के ऊपर जो इंद्रिय तृप्ति इत्यादि को त्याग कर बहुत रुचि के साथ वो भगवत कैंकर्य में लगे थे जंगल में। तो राजा लोग जब राज्य कार्य करते हैं उस समय उनको बहुत कुछ सामग्रियां पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे राजमहल में रहते समय उनको ऐशाराम में रहने के लिए व्यवस्था, अच्छा खाने पीने की व्यवस्था और आभूषण पहनने की व्यवस्था है, मुकुट पहनता है, कुंडल पहनता है, आभूषण पहनता है, अच्छे अच्छे मुलायम बिस्तर में सोता है और बहुत मान सम्मान भी है, अनेक हाथी हैं, घोड़े हैं, अनेक सलाम मारने वाले हैं, सिर्फ थाली बजाकर 10-10 लोगों को बुला सकता है वो, कौन है इधर आ जाओ है, कौन है उधर आ जाओ है, ऐसे सब उनके हुक्म चलता है राजा होते समय। इसलिए राजा लोग वानप्रस्थ के अवस्था में उस तरह के राज्यकार को छोड़कर जंगल में अपने धर्मपत्नी के साथ जाकर रहते थे, कुटिया में रहते थे, ऋषि मुनियों के सान्निध्यता में उनके संग भी करते थे, साथ साथ दिव्य ज्ञान एक और प्राप्त करते थे, साथ साथ तपस्या भी करते थे। देखिए तपस्या इसलिए किया जाता है, तपस्या का मतलब क्या है, तो तपस्या में दो तरह के तपस्या है, एक है भौतिक तपस्या, दूसरा आध्यात्मिक तपस्या जिसको दिव्य तपस्या बोलते हैं। भौतिक जीवन में भी लोग तपस्या करते हैं, अगर IIT में घुसना हो, इसको प्रवेश करना हो, वो लोग तो दिन रात कसरत करते हैं, पसीना छूटते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ कुछ लोग 5-5 बार लिखते हैं एक ही परीक्षा को भी, तो अब कितना कसरत करते हैं, गधों से भी ज्यादा बोझ उठाते हैं मोटे मोटे किताबों को, है ना। तो भौतिक जीवन में अगर आप देखेंगे ओलंपिक्स में किसी को प्रवेश करना हो तो वो लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, 4-5 बजे उठकर दौड़ते हैं, भागते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कोई कुछ भी गेम्स हो ऐसे। तो अगर वो लोगों को भौतिक प्राप्ति हो भी जाए वो थोड़ा नाम यश प्राप्त होता है, लेकिन शरीर तो मिट्टी से मिल जाता है एक दिन, तो ये नाम यश कितने समय के लिए टिकने वाली चीज़ है। तो शास्त्र बताते हैं कि इंसान को दिव्य तपस्या करनी चाहिए, तो दिव्य तपस्या से चित्त शुद्ध होता है, चित्त निर्मल होने से प्रसन्नता की अनुभूति होती है, भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान की ओर प्रेम जग जाता है, सब जीवराशियों की ओर एक तरह का करुणा और तितिक्षा अनुकंपा इत्यादि जग जाता है भक्त के हृदय में। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर गुण जो दिखाई देते हैं भगवान जैसे ही गुण दिखाई देते हैं उसमें भी। तो हरेक इंसान की कर्तव्य है इस दुनिया में कि जब हमारा उम्र बढ़ता जाता है हम चित्त को शुद्ध कराते जाए, आगे जाए, ताकि हम ऐसे एक निर्मल अवस्था को प्राप्त करें इसी जन्म में और भक्ति भावना को जगाकर भगवान के पास लौट जाए, वापस ना आए। तो इस तरह मलय ध्वज बहुत पहुंचा हुआ आत्मा था, बहुत गंभीरता से भक्ति की उन्होंने, तो उनकी पत्नी भी वैदर भी बहुत खुशी से उनकी सेवा करती है आई थी जंगल में। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं पूर्व श्लोकों के तात्पर्य में, पति पत्नी साथ में रहते थे लेकिन एक दूसरे से आकर्षित नहीं होते थे, दोनों भगवान से आकर्षित होते थे। नहीं तो ऐसा बोला जा सकता है कि एक दूसरे से आकर्षित भी होते थे उनके आध्यात्मिक गुणों को देखकर, वो दोनों एक तरह के स्पिरिचुअल पार्टनर बन जाते थे। हम दोनों को आगे बढ़ना है भगवान की भक्ति में, हम कैसे एक दूसरे को मदद करें, इस भावना के साथ, तो इस भावना के साथ सेवा करती आ रही थी वैदर भी। एक दिन की बात है जब उनके पांव के निकट बैठी थी, पांव को स्पर्श किया, उन्होंने देखा कि पांव बहुत ठंडा हो गया था, तुरंत वो समझ लिया कि मेरे पति मेरे गुरु उन्होंने शरीर त्याग दिया है। तो उस समय अपने बारे में सोचा उन्होंने, अरे इतना घना जंगल में मैं अभी अकेली पड़ गई, पति का गमन हो गया, पति चले गए, तो मेरी रक्षा कौन करेगा और मेरे मार्गदर्शन कौन करेगा और मेरे साथ रहने वाला कौन होगा, अब मैं अकेली पड़ गई, मैं कैसे रह पाऊंगी। इस तरह सोच हुई जोर से फुट फुट कर रो पड़ी वाइदर भी। तो वो प्रसंग अभी चल रहा है इधर, उस समय आगे आगे के श्लोक में हम पढ़ेंगे, परमात्मा एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आकर उसको सदुपदेश करेंगे, उसको वैदर्भी को सांत्वना देंगे, तो वो आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज के सत्र में एक महत्वपूर्ण विषय बताया जा रहा है। जिस प्रकार पतिपरायणा पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरता है तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। ये छोटा तात्पर्य है, एक ही लाइन का तात्पर्य, लेकिन इसका अर्थ बहुत गूढ़ अर्थ है। तो हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में ये विरह भावना के संबंध में बहुत कुछ बातें सिखाए गए हैं। चाहे शिष्य का गुरु से विरह हो, नहीं तो भगवान के भक्तों को भगवान से एक विरह भावना का अनुभव हो, दोनों विरह आध्यात्मिक विरह बता के रूप में समझाए गए हैं। एक प्रसंग आता है पहले स्कंद में, हम लोग पढ़ते हैं, जब एक छोटा दासी पुत्र जंगल में जाकर भक्ति वेदांतों के आदेशानुसार, उनके शिक्षा के अनुसार, एक झील में नहा धोकर पानी पीकर उसके बाद एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान मुद्रा में बैठकर भगवान श्री विष्णु के अंतरात्मिक रूप में जो भगवान विराजमान हृदय में, उनकी ओर ध्यान लगाया उन्होंने, तो भगवान का नाम ले रहा था, ध्यान लगाया, उस समय अचानक भगवान उनके सामने दर्शन दिया कुछ क्षणों के लिए, शायद हो सकता है एक दो क्षण बस, तो भगवान के सुंदर स्वरूप देखने को मिला उनको। देखिए भगवान के स्वरूप जो है अपने सबके हृदय में जो विराजमान है, भागवत में हो, पद्म पुराण हो, विष्णु पुराण हो, सब एक ही तरह का वर्णन करते हैं। जैसे शिव जी वर्णन करते हैं प्रचेतों को, स्निग्ध प्रावृत घनश्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम चारु आयत चतुर्बाहुम सुजात रुचिराननम पद्म पत्र पलाशाक्षम सुंदर ब्रू सुनासिकम सुद्विजम सुकपोलास्यम समकर्ण विभूषणम। बता रहे हैं इस श्लोक में शिव जी, स्निग्ध प्रावृत घनश्याम, जैसे बादल होता है काला नीला बादल जो होता है आसमान में देखने को मिलता है, वो चमकने वाला बादल हो, अगर एक नीले बादल चमकने वाला बादल हो, जैसे क्लोजअप चमकता है देखा आपने टूथपेस्ट इसमें ग्लॉसी होता है, ऐसे भगवान का शरीर चमक रहा था, ऐसे बताते हैं। स्निग्ध प्रावृत घनश्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम, सब सारे सुंदरता का वो भंडार थे भगवान। इसका मतलब क्या है, सौंदर्य लावण्य, संस्कृत में ये दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। सौंदर्य का मतलब है ओवरऑल ब्यूटी, लावण्य का मतलब है अंग अंगों में सुंदरता, जैसे किसी के आंख हैं कमल के पंखुड़ियों के बराबर है, किसी के नाक चंपा जैसे फूल के बराबर है, हम लोगों ने फूल भी देखा नहीं है वो समस्या है कभी, जिनके ओंट जो है बिंबा फल के बराबर, बिंबा फल देखना पड़ेगा हमको, वो लाल है वह, है ना, ऐसे है। और इस तरह हर एक अंग के बारे में वर्णन है, जैसे माथा जो है ये एक चंद्रमा जो होता है, ऐसे चंद्रमा होता है ना, ऐसे चंद्रमा के बराबर है, तो इस तरह अलग अलग वर्णन किया जा रहा है। उधर उनका दोनों कुंडल होते हैं, जब कुंडल हिलते हैं बहुत सुंदर और भी सुंदर दिखते हैं, जैसे भगवान मकर कुंडल पहनते हैं, उनका मकर कुंडल उनके गाल में चमक रहा है, जब भगवान मुस्कुराते हैं उनके दांत दिखाई देता है, लेकिन मुस्कुराने का मतलब क्या है, हंसना और मुस्कुराने में फर्क है, हंसना मतलब हा 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 ऐसा हंसना, मुस्कुराने मतलब है ऐसे करना, थोड़ा दांत दिखाई देता है, लेकिन दांत भी उसमें लालिमा है, क्योंकि उनके ओंटों की लालिमा दांत में आता है, और ये मकर कुंडल की चमक गाल में आता है, और उनकी आंखें कमल के पंखुड़ी के बराबर है, उनके घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं भगवान। ऐसे भगवान के दर्शन करते हुए शिव जी प्रचेतों को बता रहे हैं कि कितने खूबसूरत है भगवान, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, पीताम्बर पहने हैं। तो इस तरह भगवान के अंतर्यामी का दर्शन शास्त्र में कोने कोने में एक ही रूप से बताया गया है, तो वही दर्शन प्राप्त हुआ उनको भी, वो लड़का जो बाद में नारद मुनि जो बना उसको, लेकिन तत्क्षण भगवान अप्रकट हो गए उधर से। तो लड़के को बहुत बुरा लगा कि भगवान आए, भगवान ने मुस्कुराया, लेकिन अपरकट हो गए, ये कितना पराजय हो गया हमको। जैसे अंग्रेजी में क्लाइमैक्स बोलते हैं, एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं। एंटी क्लाइमैक्स मतलब क्या है? आई केम, आई सॉ, आई रन अवे, मैं आया, मैं देखा, मैं भाग गया, एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब है, मैं आया, मैं देखा, मैं विजय प्राप्त किया। इस तरह उन्होंने सोचा कि भगवान की सान्निध्यता हमेशा के लिए प्राप्त होगा हमें, ऐसे उन्होंने सोचा था, हुआ नहीं। तो वो नारद लड़का जो था वो रोने लगा, अपने आंसू पहुंच कर वापिस बैठ कर ध्यान मुद्रा में बैठ कर ध्यान लगाया, लेकिन बहुत घंटों घंटे ध्यान करने के बाद भी भगवान प्राप्त नहीं हुए। तो उस समय भगवान ने देखा कि ये जो बच्चे मेरे ऊपर ध्यान लगा रहा है, इसको कुछ बोलकर शांता बना दूं। तो भगवान ने आकाशवाणी के रूप में एक श्लोक बोला, हंत अस्मिन् जन्मनि भवान मामाम द्रक्षुमिहार्हसि अभी पक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम दुर्दर्शो हम, करेक्ट, दुर्दर्शो हम। वो बोले कि दो योग्यता अगर भक्त में नहीं होता है तो मैं उनको दर्शन नहीं देता हूं। एक है उन्होंने भरपूर सेवा नहीं किया हो, नहीं तो उनके हृदय में अभी भी कुछ मल पड़ा हो, चित्त शुद्ध नहीं हुआ हो पूरा, तो उनको मैं दर्शन नहीं देता हूं। इसलिए उन्होंने बोला कि तुम जीवन पर्यंत इस तरह ध्यान करते जाओ, भक्ति करते जाओ, तीर्थ स्थलों में जाकर और पुण्य इकट्ठा करो, नाम जपो, साधु संतों की संग करो, शास्त्र का पठन करो, इत्यादि करते जाओ बच्चे, और इस जन्म में तुम मुझे देखोगे नहीं, लेकिन तुम्हारे मृत्यु के बाद अगले जन्म में तुम एक शुद्ध भक्त बनोगे नारद नाम के। जब तुम नारद बनोगे तो तुम सदा निरंतर काल के लिए मुझे देखोगे तब, लेकिन उस समय तक तुमको धैर्य रखना चाहिए। ऐसे भगवान ने उनको आकाशवाणी के रूप में उपदेश दिया। तो बच्चा शांत हो गया, खुश हो गया, उसके बाद भक्ति को जारी रखा, अलग अलग प्रदेशों में जाकर तीर्थयात्रा तीर्थाटन किया, सब किया उसने ऐसे। तो उधर ये महत्वपूर्ण बात हम लोग सीखते हैं उधर, कि हम लोग कभी कभी किसी चीज का मूल्य नहीं जानते, इसलिए भगवान उसको हमें नहीं देते। जैसे भगवान की मूल्य अगर हम नहीं जानते तो भगवान दर्शन कभी देते नहीं, नहीं तो भगवान को प्राप्त करने की आतुरता इच्छा हमारे में हो सकता है, लेकिन शायद योग्यता नहीं है हमारे पास, है ना। जैसे कुछ कुछ लोगों को आईआईटी क्या है मालूम नहीं है, आईटीआई क्या है, आईआईटी क्या है, दोनों में फर्क मालूम नहीं है। मैं भी ऐसा ही था पहले, जब हम स्कूल में थे, पॉलिटेक्निक में थे, हमको आईटीआई क्या है, आईआईटी क्या है मालूम नहीं था। लेकिन कुछ लोगों को आईआईटी क्या है मालूम है, आतुरता भी है, लेकिन योग्यता नहीं है, परीक्षा पास नहीं किया है, तैयारी नहीं किया है, ऐसे कुछ लोग हैं, है ना। इस तरह कुछ लोगों को मालूमात ही नहीं है, कुछ लोगों को मालूमात है, आतुरता भी है, लेकिन क्या नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन चित्त, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं हुआ भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दो चीज करना पड़ेगा। भगवान ने उनको बोला, तुम्हारे हृदय में मेरे लिए जो प्रेम है वो बहुत कोमल प्रेम है, कोमल श्रद्धा है, उसको तुम्हें मजबूत करना पड़ेगा। जब तुम श्रद्धा को मजबूत कर दोगे, जैसे एक छोटा बच्चा है, नन्ना मुन्ना बालक, वो खड़े भी हो नहीं पाता है, उठता तो नीचे गिर जाता है, वो कोमल बच्चा है। लेकिन अभी आप लोगों का शरीर बढ़ गया, अभी ताकत आ गया, चल सकते हो, फिर सकते हो, कूद सकते हो, सब कर सकते हैं। इस तरह प्रेम भी भगवान ने बोला कि कोमल प्रेम से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता आसानी से, मुझे मजबूत दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ प्रेम चाहिए, तब भगवान प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने बोला कि तुम इसको मजबूत करो, तुम्हारे प्रेम को। तो कोई पूछ सकता है कि कोमल प्रेम को मजबूत प्रेम कैसे किया जाए, उसके लिए जैसे हम बगीचे में एक बीज को बोकर पानी सींच कर, सूर्य की रोशनी भी चाहिए उसको, कुंपन भी लगाकर रोज उसको देखते रहते हैं ताकि कोई बकरा आकर ना काए खा डाले उसको, कोई उसको जड़ से ना निकाले, तो उसका सुरक्षा प्रदान करते हैं। धीरे धीरे वो कोमल जो पौधा होता है वो एकदम मजबूत पेड़ बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, तना बोलते हैं ना, स्टेम। तना इतना मजबूत हो जाता आप उसको हिला भी नहीं पाओगे बाद में। हाँ, उस तरह भक्ति भी मजबूत हो सकता है जब हम उसको सिंचन देते हैं श्रवण कीर्तन के द्वारा। और इस तरह करते करते एक महत्वपूर्ण चीज बताया गया है, क्या है, एक विरह भावना से भक्ति मजबूत हो जाता है, विरह भावना को कल्टीवेट करने से। तो विरह भावना को कैसे एक भक्त अभ्यास कर सकता है, क्या अभ्यास हो सकता है विरह का, गोपियों में जो विरह हुआ, नहीं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, हे गोविंद आपके स्मरण में विरह भावना उदय हो रहा है मेरे हृदय में, आपको ढूंढ रहा हूं, जब तक आप मिलोगे नहीं मैं रोता रहूंगा, आंसू बहाता रहूंगा, ऐसे बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। लेकिन हमारे अंदर ऐसे तो विरह भावना का अनुभव नहीं हो रहा है। विरह भावना तो दूर की बात है, विरह के पहले आने वाले गुण क्या है, प्रेम। जब प्रेम होगा तब तो विरह होगा ना। जैसे आप देखेंगे पुणे स्टेशन में कोई लड़की अपने माता पिता के साथ आकर ट्रेन बोर्डिंग कर रही थी, तो अंदर चली गई, बैठ गई, खिड़की से ऐसे टाटा कर रही थी, तो माता पिता दोनों करचिप लेकर ऐसे रो रहे थे वो, और वो भी रो रही थी, दोनों रो रहे थे। तो क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उनका घनिष्ठ संबंध हुआ है सालों साल, 10-20 साल, उसके बाद कहीं तो पढ़ाई करने के लिए जा रही है, तो माता पिता को बहुत बुरा लग रहा है, बिछड़ रहे हैं बच्चे से, तभी तो विरह होता है। तो विरह के पहले एक स्टेप क्या है, प्रेम। जब प्रेम होगा तब विरह होगा। अगर आपके मंदिर में कोई भक्त है इधर, तभी बाहर जा रहा है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए जा रहा है, तो कोई आपको बोल रहा है कि वो जा रहे हैं 1 साल के लिए, आप क्या बोलेंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है, वो है नहीं है क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि संबंध नहीं है। जब तक संबंध नहीं है फर्क क्या पड़ेगा हमको, जब संबंध होगा तब प्रेम होगा, जब प्रेम होगा तो उनका विरह का अनुभव होगा ना। तो हमें इसलिए पहले प्रेम को जगाना पड़ेगा। प्रेम कैसे जगाया जा सकता है एक व्यक्ति के हृदय में, प्रेम तब जगता है जब एक संबंध होता है, संग होता है, संग से प्रेम होता है। जैसे काम भी हो प्रेम भी हो, संग से जग जाता है। जैसे कुछ कुछ लोगों का अनुभव है, जैसे लव एट फर्स्ट साइट ऐसे बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति को देखते ही उनके हृदय में एक संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसा हो भी सकता है कि एक पुरुष दूसरे पुरुष से मैत्री जोड़ता है, एक स्त्री दूसरे स्त्री से, नहीं तो एक पुरुष एक स्त्री से ऐसे संबंध जुड़ता है इस दुनिया में। तो कुछ कुछ लोगों का संबंध पहले बार देखते ही संबंध जुड़ता है, कुछ कुछ लोगों का संबंध संग करने से मजबूत होता है। जैसे एक भक्त का आप संग करेंगे, शुरुआत में आपको मालूम नहीं ये कौन है, लेकिन निकट आने के बाद उसके सद्गुण देखकर आपको आश्चर्य होता है कि ये सत्यपरायण है, ये बहुत नम्र है, ये इसके अंदर बहुत तितिक्षा है, सहिष्णु है, भक्तिमान है और सेवापरायण है, इसके अंदर गुरुनिष्ठा है, इस तरह अलग अलग विविध गुण दिखाई देते हैं। आप उसको देखकर आपके अंदर एक आश्चर्य पैदा होता है कि ये क्या मनुष्य है, क्या है, साधारण मनुष्य नहीं दिख रहा है, ये तो देवता है। और उसको देखने के बाद आप अपने घर वापस लौट जाओ तो उनका स्मरण आता है। उनके स्मरण आने से, अंग्रेज में एक शब्द है एडमिरेशन, एडमिरेशन का मतलब क्या है, सोच सोच कर मन में आश्चर्य होता है और हम खुद ही हंसते हैं, खुद ही उनकी अनुपस्थिति में रोते हैं, उस महान पुरुष की सोच कर, बार बार सोच कर हमारे अंदर भी पवित्रता बढ़ेगा उनके बारे में सोचने से ही, इसको एडमिरेशन बोलते हैं। और उसके बाद क्या आता है मन में, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इतने सारे विशाल दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, इतने बड़े दुनिया में ऐसे एक अच्छे भक्त के साथ हमारा संग प्राप्त हुआ, तो हमारे अंदर कृतज्ञता पैदा होता है, कितना भाग्यशाली हूं, कितना भाग्यशाली हूं, इस दुनिया में कोटि कोटि जीव भटक रहे हैं, उनको ऐसे एक अच्छे एक सद्गुरु नहीं प्राप्त हुए, नहीं तो उनको एक वैष्णव नहीं प्राप्त हुए, उनको संग नहीं प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त हो गया, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, ऐसे ही कृतज्ञता प्राप्त होता है। और वो उस कृतज्ञता, और व्हाट इज एडमिरेशन इन हिंदी, एडमिरेशन, एडमिरेशन इज हियर अप्रिसिएशन इज हियर माउथ, सराहना बोलते हैं, आदर इज रेस्पेक्ट, प्रशंसा इज प्रेज, सराहना करेक्ट। तो पहले तो उनको उनके गुणों को देखकर आदर होता है, उससे हम सराहना होता है हमारे हृदय में, उसके बाद क्या होता है कृतज्ञता होता है, कृतज्ञता के बाद क्या होता है अप्रिसिएशन, उसके बाद आप रोक नहीं पाओगे। जैसे एक ग्लास में दूध भरो, भरते जाओ भरते जाओ, पूरे होने के बाद क्या होता है उमड़ पड़ता है बाहर। इस तरह आप चुप नहीं रह पाओगे, जाकर दूसरों को बोलोगे आप देखो भक्त कितना अच्छा है, लोग बोलेंगे अरे ठीक है अच्छा है छोड़ दो हमको, बार बार बोलते रहते हो, क्योंकि उनको मालूम नहीं है उस भक्त के बारे में, लेकिन ये बोलता रहेगा, इनको बोलेगा उनको बोला इनको बोलेगा, ऐसे सबको जाकर बोलेगा। कृष्ण के बारे में भी ऐसे ही लोग बोलते जाएंगे। गोपियां जो है भगवान जंगल में चले जाने के बाद आपस में बातचीत करते रहते हैं, एक गोपी बोलती है ये भगवान के वंशी के बारे में, दूसरी गोपी बोलते हैं भगवान के खेल कूद के बारे में, इस तरह अलग अलग गोपियां वर्णन करती है, क्योंकि वो चुप नहीं रह पाती है। जिसको आप प्रेम करते हो उनके बारे में बोलना आपके लिए स्वाभाविक है। कुछ कुछ विद्यार्थी हैं अपने सब मित्रों को बोल देते हैं किसी लड़की के बारे में, और बोलेंगे उनको किसी को मत बोलो, बाद में सबको पता चल जाता है कि अरे सबको बोला है इसने, है ना। तो इस तरह आप देखेंगे ये प्रेम का परिभाषा है, प्रेम का ऐसे स्वभाव ऐसा है। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में जब प्रेम का चिंगारी उत्पन्न होता है, वो चिंगारी बढ़ता होता है जाता है, वर्धन होता जाता है धीरे धीरे। जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं वो हमारे प्राण बन जाते हैं, इसलिए कुंती महारानी बता रही है केवयम नाम रूपाभ्याम यदुभि सह पांडव भवतो दर्शनम अदर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम इवेशितुः। बोलती है कि हे कृष्ण आपके अनुपस्थिति में हम लोग मृतवत हो जाएंगे, मृत शरीर के बराबर, क्योंकि आप ही हमारे प्राण हो, ऐसे बोल रही है। हमारे नाम और यश का क्या मतलब पूछ रही है कुंती। पांडवों के नाम यश बढ़ गया आपके संग के कारण, अगर आप नहीं होते तो हमारा जीवन का कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे बता रही है। वो तो माता कुंती बता रही है, उनका बेटा भी वही बोल रहा है अर्जुन, क्या बोल रहे हैं व्हाट दैट वाज, एक श्लोक में पहले स्कंद के 15वां अध्याय में यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्य प्रिय दर्शन उक्तो हि रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा, अर्जुन बोल रहे हैं यस्य क्षण वियोगेन, इस दुनिया में एक क्षण के लिए भी कृष्ण का अनुपस्थिति हो सब चीज बंद पड़ जाएंगे इस दुनिया में, ऐसे बता रहे हैं। चिड़िया नहीं उड़ेंगे, समुद्र में लहर नहीं उठेंगे, लोग नहीं चल फिर पाएंगे, कोई बोल नहीं पाएगा, कुछ नहीं होगा, दाने नहीं उगेगा, फूल नहीं उगेंगे, फल नहीं उगेंगे, सब बंद पड़ जाएगा इस दुनिया में उनके उनके अनुपस्थिति में। और जिनके उपस्थिति में सब सारे दुनिया क्रियाशील दिख रहा है, ऐसे बता रहे हैं। तो अर्जुन भी ऐसे ही मान रहा है कि भगवान हमारे प्राण है, प्राणनाथ है, उनके अनुपस्थिति में हम कैसे जिंदा रह पाएंगे ऐसे। तो इस तरह प्रेम का वर्धन होने के बाद जितना प्रेम बढ़ेगा भगवान के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए प्रेम बढ़ता है, उसके बाद उनके अनुपस्थिति में विरह का अनुभव होता है। देखिए इस दुनिया में अगर कोई नारी अपने पति को कुओं बैठती है तो खोने के बाद वो विधवा जब बनती है उनको बहुत दुख होता है, उनका भी विरह होता है, लेकिन उस विरह में और भगवान के भक्तों के विरह में भूमि और आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि वो विधवा जो होती है उसके पहले पति के साथ रहती थी, दोनों साथ में मार्केट जाते थे, मंदिर जाते थे, दोनों साथ में एक दूसरे के आनंद लेते थे, हैं उनकी उपस्थिति में एक दूसरे के जोक मारते थे, हैं लेकिन अभी उनके अनुपस्थिति में उनका स्मरण आता है और उनका स्मरण उनको सर्प जैसे काटता है, डसता रहता है उनका स्मरण, उनको जितना वो सोचेगी उतना वो रोएगी और अनुपस्थिति का अनुभव महसूस होगा और उसके कारण उनको लगेगा कि जीवन में कुछ सार ही नहीं है, मतलब नहीं है, इस दुनिया में कोई और नहीं है मेरे संग के लिए योग्य, तो उसको दर्द उसका बढ़ता जाएगा। इसलिए आप देखेंगे जब ये स्त्री नहीं तो पुरुष निकल जाते हैं इस दुनिया से, उनके पार्टनर भी जल्दी निकल जाते हैं। जैसे पिछले साल मेरी माँ पुणे में आकर 3 महीने ठहरी थी, उसके बाद वो उनका देहांत हो गया। 3 महीने के बाद पिताजी भी चले गए, लेकिन पिताजी बड़े डिटर्मिनेशन था उनका बड़ा, लेकिन माता गुजरने के बाद उनका डिटर्मिनेशन पूरा टूट गया, चूर चूर हो गया। उसके बाद हमने पिताजी को कभी रोते हुए देखा नहीं है, लेकिन उसके बाद माँ जाने के बाद वो सोचते थे, उनके बारे में बातचीत करते थे। वो चले गए मेरे पहले हैं, मैं भी चल निकल जाऊंगा अभी है ऐसे है। तो क्योंकि संबंध ऐसे होता है, उसमें दर्द होता है उसमें, लेकिन भगवान के विरह में आप देखेंगे जितना भगवान का विरह अनुभव होता है उतना भक्त लोग उनका जब सोचते हैं तो भगवान के स्मरण से उनके पुनः उपस्थिति का अनुभव होता है। जैसे नंद बाबा जब जाते थे यमुना के तट में, उधर कृष्ण को देखते थे विरह भावना में, जब गोवर्धन के पास जाते थे उधर भी कृष्ण को मुरली बजाते हुए देखते थे। कभी उनको सुनाई दिया वृंदावन के कदम कानन में कोई कोयल कूता था ऐसे, तो उनको लगता था मेरा बेटा मुरली बजा रहा है, ऐसे उनको लगता था ऐसे उनको। तो इस तरह जितना भगवान के विरह में रहे उतना भगवान का उपस्थिति महसूस हुआ उनको, उसके सोच में उनको लगा कि मानो कृष्ण इतने निकट हैं। ऐसे हंसते थे कृष्ण, ऐसे बातचीत करते थे, इधर उन्होंने खाना खाया, इधर उन्होंने नाचा कालिया के ऊपर, इस तरह बार बार अलग अलग लीलाओं का स्मरण करते हुए भक्तों को भगवान का अनुभव बढ़ता जाता है। इतना अनुभव बढ़ जाता है, भगवान अगर साक्षात आ भी गए तो भगवान उन भक्तों को हिलाना पड़ेगा, क्योंकि भक्त इतने डूब जाते हैं भगवान के लीला स्मरण में। भगवान बोलेंगे अरे मैं आ ही गया इधर, वो बोलेंगे थोड़ा बैठो हम अभी स्मरण में डूबे अभी है, ऐसे बोलेंगे भगवान को ऐसे। तो ऐसे भगवत चिंतन में भगवत स्मरण में उनको प्रेम उमड़ पड़ता है उनके हृदय में, उतना ही आनंद होता है जितना उनके उपस्थिति में उनको आनंद का महसूस होता है ऐसे। तो वो तो भगवान की बात हो गया, अभी इधर गुरु और शिष्य की बात है। जब प्रभुपाद जी 1977 नवंबर में उनका देहांत हुआ, वैकुंठवास हुआ, उस समय सच्चुपदास महाराज जी सबसे वरिष्ठ शिष्य थे, वो अनेक शिष्यों को डालास टेक्सास में उनके लिए अनेक प्रवचन दिया एक के बाद एक। तो मैं भी उन प्रवचनों को पढ़ा था, तो मैं मुझे उधर से सीखने को मिला एक गुरु के अनुपस्थिति में शिष्य को हृदय में किस तरह का अनुभव होना चाहिए। एक शिष्य को सोचना चाहिए कि जैसे रामानंद राय बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ए रामानंद राय बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा शोक का कारण क्या है, तो उन्होंने बोला कि भक्त की संग ना मिलना यही बड़े शोक का कारण है, ऐसे बोला उन्होंने। कभी कभी हम लोगों को नौकरी ट्रांसफर हो जाता है एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में, एक शहर में एक भक्त का अच्छा संग मिला, अच्छे हमने अध्यात्म में आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे शहर जाने के बाद लगता कि रेगिस्तान जैसे है, मंदिर नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, प्रसाद नहीं है, भक्त बहुत तो उसको विरह का अनुभव होता है। तो वही उन्होंने बताया। और भक्तों में से श्रेष्ठ है गुरु महाराज, जो गुरु होते हैं भक्तों सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, आगे पहुंचे हुए भक्त हैं, साक्षात्कारी पुरुष हैं, और उनके मुंह से जो भी निकलता है वो भगवान के वाणी ही निकलता है उनके मुंह से। तो ऐसे गुरु की संग को जो शिष्य ने अच्छी तरह प्राप्त किया है, उनके वाप का वाणी का लाभ लिया हो, उसको ऐसे गुरु की अनुपस्थिति में लगेगा कि मानो एक बहुत बड़े सेना के जो कमांडर इन चीफ जो होता है, अगर वो कमांडर इन चीफ ही निकल गया हो तो सारे सेना बिखर जाएगा ना, उनको सपोर्ट देने वाला एनकरेजमेंट देने वाला कौन रहेगा। इस तरह कभी कभी प्राणियों में भी देखा जाता है कि प्राणियों का एक लीडर होता है, क्योंकि प्राणियों में जो निडर होता है सब प्राणियों को आगे लेके जाता है वो लीडर माना गया है ना। जैसे ये जो एक बार हमने देखा एक वीडियो में, उन्होंने दिखाया कि ये जो बैंस होता है जंगल में उसको क्या बोलते हैं, बैसन है? उसका बहुत बड़ा ऐसे सिंह होता है, बैसन होता है। ऐसे एक बार एक बैसन का बच्चा मरने ही वाला था, वो नीचे पड़ा था, वो छोटा बच्चा, तो चार पांच सिंह शेर आ गए, क्योंकि भैंस का शरीर बड़ा होता है ना, वो लोगों शायद बांट कर खाने वाले थे उसको, लेकिन उसका वो जिंदा था, थोड़ा उसको शरीर में कुछ तकलीफ था, भाग नहीं पाया वो, लेकिन उसको खाने के लिए चार पांच शेर आ गए। लेकिन ये भैंस चिल्लाकर बुला रहा था अपने लोगों को, ए आ जाओ बचाओ मुझे। तो लगभग 60-70 भैंस आ रहे हैं, तो शेरों ने उनको देखा, लेकिन किसी भैंस को आगे जाने के लिए ये नहीं है, क्या बोलते हैं, साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो उनको डर रहे हैं कि मैं आगे जाऊंगा तो शेर हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे तो क्या होगा। सब आते हैं ग्रुप के साथ आते हैं, वो पीछे चले जाते हैं, ऐसे ऐसे पीछे पीछे जाते हैं, ऐसे आते हैं, कोई निकट नहीं आ रहे। तो एक भैंस था वो सामने आ गया है? और वो सिंह की ओर दौड़ कर गया, तो सांप के सब आ गए उसके साथ है? तो सब सारे सिंह को भगा दिया उन्होंने, छोटे बच्चे को बचा दिया उन्होंने। इस तरह से प्रभुपाद जी देखे, वो ऐसे बड़े ये जो लीडर था उनके ऐसे हैं, क्योंकि भारत से भारत के बाहर जाकर पाश्चात्य देश जो इंद्र तृप्ति का अड्डा है, उधर जाकर कौन बोल सकता है कि अरे नास्तिक को नास्तिकता को छोड़ो, कृष्णा का भक्त बनो, मंदिर स्थापन करो, राधा कृष्ण के विग्रह का स्थापन करो, नाम लो, सब पाप कर्मों को छोड़ दो है? छोड़कर धोती कुर्ता पहनो, माताएं सब साड़ी पहन लो, सब नाचो गाओ, कौन बोल सकता है, है? अगर किसी में हिम्मत नहीं हो तो इसलिए वैष्णव भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त होता है, उसमें ऐसे साहस है, हिम्मत है भगवान के संदेश को देने के लिए, डरता नहीं वो किसी से भी। हम लोग कमजोर होने के कारण हम सोचते हैं कि अरे उधर लेक्चर देने वाले को कृष्ण का नाम मत लेना, हरि नाम मत बोल देना, इस्कान का नाम मत लेना, ऐसे हम बोलते हैं, बहुत डरते हैं कहीं भी बोलते समय। अनेक बार लोग नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते समय बोलते हैं, कंटीमाला का अंदर लग लो, ऐसे रख लो, तिलक को पहुंच दो, ऐसे ऐसे बोलो उसको, ऐसे बोलो, घुमा घुमा कर बोलते जाओ, सीधा मत बोलो, क्योंकि हम बहुत डरते हैं, कमजोर हैं बोलने के लिए। तो हिम्मत वाले महान शुद्ध भक्त जो हैं, वो माया के अड्डा में जाकर माया के ही बड़ा खिला जो है उसको तोड़ कर उधर खुद भी बैठ जाते हैं, भगवान को भी बिठा देते हैं, और सारे दुनिया को लाते हैं उधर। तो इसलिए ऐसे एक बड़ा कमांडर इन चीफ प्रभुपाद जी जब इस दुनिया में अप्रकट हो गए, तो वो लोगों को लगा कि हमारे लीडर निकल गए, अभी हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे हम इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे उनको लगा। तो ये महाराज जी सत्यप्रदास महाराज जी ने उनको बताया, देखो ये एक वैष्णव भक्त अपने झुंड के साथ जब रहता है, और ये एक बहुत बड़ा कमांडर इन चीफ सेना का अधिपति अपने लोगों के साथ रहता है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। फर्क क्या है, एक गुरु क्या करते हैं, वैष्णव को ऐसे प्रशिक्षण देते हैं, इतना प्रशिक्षण दे देते हैं कि उनके अनुपस्थिति में भी लोग उनका उपस्थिति का अनुभव करते हैं वाणी के द्वारा। जैसे प्रभुपाद जी ने अपनी किताबों को छोड़कर गया, और बहुत बड़े किला बनाए उन्होंने, किला क्या है, इस्कान मंदिर सब किला के बराबर, किला के अंदर सैनिक लोग सुरक्षित रहते हैं, इस तरह इस्कान के अंदर जो जुड़े हैं, दीक्षा लिए हैं, भक्तों के संग करते हैं, साथ में अगर जैसे इधर बटालियन है, करेक्ट है ना, बटालियन के बाहर क्या है, बहुत बड़ा दीवार है, बोलते हैं ए दीवार के निकट मत आना, ऐसे लिखा है, देखा आपने, कोई जा नहीं सकता, अंदर घुस नहीं सकता, बड़ा सुरक्षा है उधर सैनिकों के लिए। इसी तरह भक्तों के लिए भी इस्कान बनाया है प्रभुपाद जी ने, एक जो बहुत बड़ा किला के बराबर है, सुरक्षा है उधर। और भक्त लोग एक दूसरे का संग करके, प्रभुपाद जी के स्मरण करके, उन्होंने क्या क्या लीला की है, कैसे माया को पराजित करके कृष्ण भावनामृत को स्थापित किया है, इन लीलाओं के संबंध में 25 से भी ज्यादा किताब निकले हैं प्रभुपाद की लीलाओं के संबंध में। उनमें से सबसे टॉप है प्रभुपाद लीलामृत, ऐसे। तो इस तरह के प्रभुपाद जी के संबंध में कथा पढ़कर, प्रभुपाद के दिए हुए ग्रंथों का अध्ययन करके, प्रभुपाद का स्मरण करते हुए, और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को छोड़कर गए हैं जो महान गुरु महाराज जी लोग हैं इस्कान में, तो वो लोग के अंदर इतना उत्साह है, इतना दृढ़ता है, वो हजारों लाखों लोगों को छू रहे हैं। वो भी प्रभुपाद जैसे बोला जाता है कि शेर का बच्चा शेर होगा ना, जैसे एक कंगारू अगर 4 फुट दौड़ता है तो कंगारू का बच्चा क्या करता है, और वो 16 फुट वो कूद मारेगा वो, ऐसे। इस तरह बक्सान सरोज ठाकुर बड़े शक्तिशाली थे, तो उनके शिष्य बने प्रभुपाद जी। तो भक्षानसर से सारे दुनिया में प्रचार किए, तो उनके शिष्य प्रभुपाद जी सारे दुनिया में प्रचार किया उन्होंने हरिनाम को लेके गया। अभी उनके शिष्य एक नहीं दो नहीं सैकड़ों शिष्य हैं, और वो लोग अलग अलग चीज को लेकर जैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज हरिनाम को लेकर सारे दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद की किताबों को लेकर कोटि कोटि किताबों को छाप कर वितरण कर रहे हैं। मैंने एक लीला सुना अभी दिल्ली में, एक बार मायापुर के कुछ भक्त लोग 10-20 लोग जुट कर साथ में आकर गए दिल्ली में, बोले परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को, महाराज जी हर साल दिल्ली मंदिर को ही फर्स्ट रैंक मिलता है किताब वितरण में, मायापुर का सेकंड रैंक मिलता है, अभी हम लोग साथ में आए हैं आपके आशीर्वाद पाने के लिए ताकि इस साल हम लोग फर्स्ट रैंक हमें मिल जाए, ऐसे उन्होंने विनती किया। तो महाराज बोले देखो ये सारे साल में जनवरी से नवंबर तक तुम लोगों को फर्स्ट रैंक चाहे तो ले लो, लेकिन दिसंबर में फर्स्ट रैंक दिल्ली का रहेगा, आशीर्वाद आप लोग वापस चले जाओ। तो वापस चले गए, जाकर बोले, उसके बाद इस बोले जयपत का महाराज बोले मैं खुद जाकर ब्लेसिंग मांगूंगा, तो खुद आ गए दिल्ली में। तो प्रभु जी गोपाल कृष्ण महाराज को मिले, महाराज जी इस साल हमको फर्स्ट रैंक मिला, अगले साल गए थे वो, बोले कि इस साल हमको फर्स्ट रैंक मिलना है आप आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज बोले कि आप मेरे से भी वरिष्ठ हैं, क्योंकि भारत में दो ही लोग हैं जो सबसे वरिष्ठ हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज और परम पूज्य जयपत का स्वामी महाराज हैं, तो आप मेरे शिक्षा गुरु जैसे हैं, अगर आप मांगते तो मैं ना कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है आप फर्स्ट रैंक लीजिए। तो उस साल फर्स्ट रैंक मिला मायापुर को, अब दिल्ली सेकंड रैंक, अगले साल वापस फर्स्ट रैंक में आ गया दिल्ली उसके बाद, ऐसे हमने सुना। तो बोलने का मतलब क्या है, गोपाल कृष्ण महाराज ऐसे सारे दुनिया में किताबों को लेकर ऐसे 50-60 भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करके अनुवाद करके वो वितरण कर रहे हैं, है ना। इस तरह आप देखेंगे परम पूज्य राधानाथ महाराज की पहले दिन से कम्युनिटी डेवलपमेंट केयर, डिवोटी केयर, इसके ऊपर जोर था। अभी इस्कान में भी डिवोटी केयर का एक कोर्स आ गया अभी, क्योंकि इस्कान का दो मोटो है, एक है मोर डिवोटीज हैप्पी डिवोटीज, मोर डिवोटीज का मतलब प्रचार और हैप्पी डिवोटीज का मतलब डिवोटी केयर। तो अगर आपके अंदर ये दोनों में से एक के ऊपर वेग होना चाहिए आपको, या तो हमारे अंदर ऐसे जोश होना चाहिए प्रचार करके और लोगों को लाओ इस्कान संस्था में, अगर उस तरह का वेग नहीं है तो जो भक्तों को बनाकर ला रहे हैं इस्कान के अंदर उनको बचा कर रखना चाहिए। यू टेक केयर ऑफ द एग्जिस्टिंग डिवोटीज सो दैट दे डोंट गो, ईदर ऑफ द टू वन शुड डू, और इफ यू कैन डू बोथ इट्स वंडरफुल। तो इस तरह आप देखेंगे कि अभी इतने सेनापति बढ़ गए हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु के आर्मी में, ये बड़े ये तो इसके कारण ये संकीर्तन आर्मी जो है इन लोगों से हमें स्फूर्ति लेकर हमें आगे जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे उनको समझाया कि प्रभुपाद की अनुपस्थिति में उनके वाणी का आश्रय लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई कोई भक्त बोल सकते हैं कि प्रभु जी प्रभुपाद की अनुपस्थिति भी महसूस नहीं हो रहा है हमको, कुछ विरह भावना भी नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है कि ठीक है जब तक प्रसाद मिल गया काओ सो जाओ, ऐसे लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये बहुत पतित अवस्था है कि हम लोग अन्नमय कोष में हैं। अन्नमय कोष का मतलब क्या है, आज का भोजन क्या है वो ही देखना बस। तो अगर हम ऊपर अभी तक नहीं उठे, यही नर्तम दर्शाकर अपने गीत में गा रहे हैं, बोल रहे हैं, गोलोक प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना रति ना जन्मिलो के नेता। हम उस श्रेणी के वक्ता बन सकते हैं जो बोल सकता है भगवान को, हे भगवान मैं इतना गिरा हुआ इतना पतित भक्त हूँ, मेरे अंदर कुछ भावना ही नहीं उठता गुरु के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, महात्मा पुरुषों के लिए, बाकी वैष्णवों के लिए। अगर इन महात्माओं के लिए भी भावना नहीं उठता, बाकी वैष्णवों के ऊपर आदर कैसे मैं कर सकता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि यह भक्त के अंदर ये दोष है, उसके अंदर ये दोष है, यह ऐसा है, यह वैसा है, किसी का संग नहीं करना चाहते हम, एक ही व्यक्ति को हम महान मानते हैं वो गुरु है, उनके बारे में भी हम उनके विरह भावना भी नहीं अनुभव होता हमारे में. आई एम दैट स्टैंडर्ड ऑफ डिवोटी हु डजंट फील एनी डिवोशनल सेंटिमेंट्स और डिवोशनल सिम्टम्स टुवर्ड्स द सुपीरियर्स टुवर्ड्स गुरु. ऐसे एक श्रेणी का एक तुच्छ भक्त हूँ. लेकिन आप इतने महान हो, हमको भी अभी तक भक्ति मार्ग में बचा कर रखे हो आप. ये आपकी महानता है, हमारी गुण नहीं है. ऐसे भक्त को सोचना चाहिए. दुर्दैव ईदृश निहाजनी ज्ञान रागा. हे भक्त, हे भगवान, आपके अलग अलग नाम से आप पुकारे जाते हैं. जैसे कृष्ण, गोविंद, गोपाल, आप एक कार्य करते हो तुरंत नाम मिल जाता है आपको. अर्जुन की सारथी बनते हो, आपका नाम क्या पड़ता है? क्या पड़ता है? पार्थ सारथी है. आप गायों को बच्चों के साथ गिरे हुए रहते हो, आपका नाम पड़ा गोविंद, पड़ा आपका नाम है. लेकिन हरेक नाम में इतना शक्ति है, ताकत है, लेकिन उन नामों को मैं ध्यानपूर्वक नहीं ले रहा हूँ, गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, सस्ता ले रहा हूँ. ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है. इसी तरह गुरु ने हमको कितना कुछ किया है, ये कृतज्ञता है. कृतज्ञता का विरुद्ध शब्द क्या है? कृतज्ञता. कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ नहीं हूँ. कृत का मतलब है कार्य जो किए हैं गुरु ने, ज्ञ का मतलब है उसका जानकारी, स्मरण रखना उसका. इसलिए हम लोगों को बैठ कर कभी ध्यान लगाना चाहिए कि मैंने क्या क्या प्राप्त किया है अलग अलग लोगों से, मैं कैसा था पहले, अभी कितना परिवर्तन आया है हमारे जीवन में. थोड़ा बैठ कर रात को सोने के पहले थोड़ा बैठ कर ध्यान करना अच्छा है. हम भटक रहे थे, हम अलग अलग सिनेमा देख रहे थे, सिनेमा गाना गा रहे थे, ऐसे लोगों के साथ मैत्री जोड़ रहे थे, कुछ भी खाते थे पहले, शुद्ध नहीं थे, एक ही कपड़े को दर्जन बार पहनते थे, जब तक वो बास नहीं आता उसको तो दुलाते नहीं थे ना. ऐसे हमारा जीवन था पहले. कुछ लोग जीन्स 6 महीने पहनते हैं, जब तक फ्रेंड्स नहीं बोलते अरे दुर्गंध आ रहा है तब तक धोते नहीं उसको. तो किस तरह का जीवन था पहले, अभी इस्कॉन में आने के बाद कितना परिवर्तन है हमारे जीवन शैली में, हमारे सोच विचार में, हमारे भगवत प्राप्ति में, हमारे एक दूसरे के साथ बर्ताव करने में, हर एक स्टैंडर्ड पर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, हमको हर एक स्तर में प्रभुपाद जी का भेंट है, योगदान हमारे जीवन में. तो इतना बहुत प्राप्त करने के बाद भी इतना सरल मार्ग दिया है प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु ने. अगर कोई कृतज्ञ नहीं होगा तो किस श्रेणी का आदमी में हम उनको गिन सकते हैं, जरा सोचिए. तो इस तरह से भक्त जब एक शुद्ध भक्त का देहांत होता है, वो अप्रकट होते हैं, तभी कुछ लोग गलत तरीके से उनका विचारधारा होता है. जैसे कुछ लोग बोलेंगे ठीक है गुरु चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, उनके किताब है ना, उनके वाणी है ना, उसका आश्रय लो बस. ऐसे कुछ लोग बोलेंगे, वो गलत है. और कुछ लोग सोचेंगे अरे अभी गुरु चले गए, अभी हमको आज़ादी मिल गया है, पहले तो दीक्षा गुरु थे पीछे पड़ते थे, अभी वो चले गए हम अभी कुछ भी कर सकते हैं. कोई गुरु भाई बोलेंगे तो बोलेंगे हम सिर्फ गुरु को मानते हैं तुमको नहीं, कुछ भी हम कर सकते हैं. ऐसे कुछ लोग चले जाएंगे संस्था को छोड़कर, ऐसे कुछ लोग कुछ बिंदे देते करने के लिए निकल जाएंगे, ये भी गलत मार्ग है ऐसे. और कुछ कुछ लोग बोलेंगे देखो पहले गुरु थे हम भी स्ट्रांग थे भक्ति में, अभी गुरु चले गए इसलिए हम कमजोर पड़ गए, हमारा पतन हो गया, ऐसे आरोप लगाएंगे गुरु के ऊपर. लेकिन असली शिष्य है वो है जो गुरु के उपस्थिति में अच्छा लाभ उठाता है, उनका संग करता है, जितना हो सकता है उतना प्राप्त कर लेता है उनका संग, और गुरु की अनुपस्थिति में गुरु का स्मरण करता है, गुरु के वाणी के ऊपर ध्यान देता है, अपने जीवन में उसको उतारता है. और गुरु अप्रकट होने के बाद भी सोचता है कि गुरु हमें देख रहे हैं, उधर से उनके स्वरूप में, उनके सिद्ध देह में, भगवत धाम से उधर से देख रहे हैं हमारे हर मोमेंट को, हम किधर जाते हैं, किधर आते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं. तो ऐसे शिष्य जो है, इसलिए प्रभुपाद ने बोला था स्पिरिचुअल मास्टर लिव्स इन हिज साउंड वाइब्रेशन एंड द फॉलोअर लिव्स विथ हिम, ऐसे बोले उन्होंने. गुरु अपने वाणी में रहते हैं और वाणी को जो गंभीरता से लेता है वो गुरु के साथ ही रहता है. उदाहरण क्या है, प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए अमेरिका को देखा उन्होंने, तभी एक गीत लिखा उन्होंने। उन्होंने बोला कि मैं अमेरिका आ रहा हूं अभी, इधर धीरे धीरे हरिनाम को फैलाऊंगा और सब जीव हरिनाम को लेंगे। इधर जो लोग बोट में चल रहे हैं वो भी हरिनाम लेंगे, जो लोग जमीन में हैं वो भी हरिनाम लेंगे, जो लोग आसमान में प्लेन में उड़ रहे हैं वो भी हरिनाम लेंगे, और इस तरह सब जीव हरिनाम लेकर भगवान की आश्रय लेंगे। उसको देखकर परम वैष्णव का हृदय खुश हो जाएगा। कौन वो परम वैष्णव बोल रहे हैं? अपने बक्सानंद ठाकुर के बारे में। जा रहे हैं अमेरिका, उनके गुरु का देहांत हो गया था 1936 में, अभी 1965 में जा रहे हैं। कितने साल हो गया? हाँ 30 साल हो गया, फिर भी बोल रहे हैं कि बक्सान सरस्वती ठाकुर खुश हो जाएंगे। मतलब गुरु को लेके जा रहे हैं साथ में। कुछ भी करते थे अपने गुरु को बोलते थे, वो गुरु जी मैं इतना प्रचार किया हूँ आपके आशीर्वाद से, आपकी इच्छा पूरी हो रही है, आपकी इच्छा थी कि पाश्चात्य देश में भगवान के भक्त लोग बने, भगवान ऐसे भगवान के भक्त बन रहे हैं, तो हम भी हमेशा 24 घंटा गुरु की उपस्थिति में रहना चाहिए। तो ऐसे रहने से उनके विरह को भी कोई सहन कर सकता है। उनके विरह में गुरु की वाणी, गुरु के कार्यकलाप, गुरु के लीलाएं, गुरु के सदुपदेश और गुरु की क्रियाएं इत्यादि याद आते हैं शिष्य को। सोच सोच कर उनके स्मरण में शिष्य रहता है, शिष्य वही बोलेगा जो गुरु उनको सिखाया है। तो ऐसे ही पथ में चलेगा जिस पथ में गुरु चले हैं, तो ऐसे शिष्य तो गुरु की उपस्थिति में ही रहता है। तो ये जो वैदर भी रो रही है, उनको इसी तरह का उपदेश देने के लिए आएंगे परमात्मा एक ब्राह्मण के रूप धारण करके, आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे। तो ये वैदर्भी की भावना से हम लोग समझ सकते हैं कि वो गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा उनके अंदर कितना गहरा था, जिसके कारण गुरु के अप्रकट होते समय वो जोर से रो पड़ी, उससे उनके प्रेम प्रकट होता है। उनके हृदय में जो प्रेम था गुरु के लिए वो प्रकट होता है। कुछ लोग इमोशनली रो सकते हैं, इमोशनल मतलब क्या, भावुक होकर रोएंगे, लेकिन गुरु ने जो बोला है करो वो नहीं करेंगे, वो भी गलत है। तो हमें भावना भी होना चाहिए, साथ साथ गुरु के दिए हुए आदेशों को भी पालन करना चाहिए। तो जैसे ये जो एक बार एक साधारण व्यक्ति वो रस्सी से पानी खींचता था एक कुआं से, लेकिन ऐसे खींच खींच कर क्या हुआ, उसका निशान आ गया उसमें, वो पत्थर में एक पत्थर था, वो पत्थर के ऊपर उसका निशान आ गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे पत्थर के ऊपर भी ये रस्सी जो वो एकदम सॉफ्ट है, ये मुलायम है रस्सी है, लेकिन पत्थर जो है बहुत हार्ड है, लेकिन उसमें भी ये निशान बना दिया इसने, क्योंकि बार बार इस तरह उसको एक सबक सीखा उसने। अभ्यास से क्या होता है, पहले हम लोग जो कोमल श्रद्धा वाले हो सकते हैं, लेकिन मजबूत श्रद्धा वाले बन जाएंगे हम जब हम अभ्यास करते हैं। तो बड़ा कालिदास बना बाद में, वो वही कालिदास बना, लेटर ऑन ही बिकेम कालिदास। सो इसी तरह गुरु के दिए हुए उपदेशों को बार बार एक शिष्य को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्मरण करना, ध्यान करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। तो गुरु जैसे ही शिष्य बन जाएगा, जैसे मैंने परमजी गोपाल महाराज का देखा, शुरुआत के दिनों में वो कितने एक तरुण बालक थे, वो जब प्रभुपाद जी को मिलते थे एकदम आदर के साथ दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके आदेश को लिया। बाद में प्रभुपाद ने जो किया वही कर रहे हैं वो अभी। प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रिक्ट में खुशी आनंद लेते थे, उसमें आनंद ले रहे हैं वो भी ऐसे। प्रभुपाद जी मंदिर खोलने में आनंद लेते थे, वो भी मंदिर खोल रहे हैं ऐसे। तो द शिष्य द डिसाइपल विल बिकम वन विद स्पिरिचुअल मास्टर इन स्पिरिट। जैसे जीसस बोलते हैं आई एंड माई फादर आर वन, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं और मेरे पिताजी हम एक हैं। एक का मतलब क्या है, क्या बेटा और पिताजी को साथ मिलाकर उनको फ्यूज करना है क्या? तो शेर का ऐसा नहीं, मेरे मत और मेरे पिताजी के मत एक मत हो गया है और उनकी इच्छाएं मेरी इच्छाएं हैं, जिस जिसमें वो आनंद लेते हैं मैं आनंद लूंगा उसमें। इसी तरह का शिष्य जो है वो संस्था को वर्धन कर सकता है, गुरु की अनुपस्थिति में भी वो आनंद में डूबे रह सकता है उनके स्मरण में। ये बात हम सीखते हैं वैदर्भी से, और ये सेक्शन बहुत खास शिष्यों के लिए सीखने लायक सबक बहुत कुछ है। आगे के श्लोक में हम आगे सुनेंगे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्री प्रभुपाद की सर्वत्र की। Thank you.